नमः ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहूणं जेनिह कसाय पाहुड मणियणयमुज्जलं मणन्तथं गाहाहि विवरियं तं गुणहरभडारयं वन्दे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। द्वितीय पुस्तक, द्वितीय अर्थाधिकार, जो प्रकृति विभक्ति है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 29 पर आ गए हैं। मूल प्रकृति विभक्ति की बात चल रही है। क्या प्रश्न है आपका? 23 पृष्ठ पर नहीं, उनको कुछ प्रश्न है। आहारक और अनाहारक, उसके बारे में समझना है। देखो 23 पृष्ठ पर, 23 नंबर, वहाँ जो नीचे का पैराग्राफ है, वहाँ समुत्कीर्तना की बात चल रही है, ने प्ररूपणा है ऐसा कहेंगे। तो मोहनी विभक्ति है वाले और नहीं है, ऐसे दोनों ही विकल्प जहाँ हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी मार्गणाएं हैं उसकी बात चल रही है। जैसे मनुष्यों में मोहनी की सत्ता वाले भी जीव है और नहीं सत्ता वाले, जो असत्ता वाले भी जीव पाए जाते हैं, परंतु अन्य गतियों में नहीं पाए जाते, ऐसे और कौन कौन सी मार्गणाओं में हो सकता है? तो यहाँ बाकी तो हमने देखे, तो आहारक और अनाहारक। तो आहारक कब होते हैं? तो सभी पर्याप्त जीव तो आहारक है, तो आहारकों में है भी और नहीं भी, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो 11वें गुणस्थान तक के पर्याप्त जो आहारक है उनमें तो मोहनी की सत्ता है, 12वें है, 13वें है, वो आहारक होते हुए भी सत्ता नहीं है, तो दोनों उसमें हो सकते हैं, हो जाएगा। अनाहारक में भी अप्लाई करना है। तो अनाहारक में सत्ता है भी और नहीं भी है, ऐसा कब होगा? तो विग्रह गति में जो अनाहारक है तो उनके तो सत्ता है, और जो केवली समुदात वाले हैं और जो अयोगी केवली जो अनाहारक है उनमें मोहनी की सत्ता नहीं है, ये दोनों ही उसमें होते हैं। इसलिए ये लिस्ट ऐसी है कि जिन मार्गणाओं में सत्ता वाले भी जीव पाए जाते हैं और बिना सत्ता वाले भी पाए जाते हैं, जिन्होंने क्षय किया है ऐसे भी पाए जाते हैं। जब सत्ता की बात आती है तो मोहनी का पूरा क्षय होना चाहिए। मूल प्रकृति की बात चल रही है अपनी, उत्तर प्रकृतियों की अभी यहाँ बात उठाई नहीं है, यानी मोहनीय, पूरा मोहनीय जहाँ नष्ट हो जाता है उसको कहेंगे अविभक्ति वाले है, और जहाँ सत्ता है उसको कहेंगे मोहनीय की विभक्ति वाले है। अब हम 29 पृष्ठ पर आ गए हैं। ये तो हमने तो सामान्य से ओघ से तो बात देखी थी। ओघ में क्या कथन आया था कि मोहनी की सत्ता वाले भी जीव होते हैं और बिना सत्ता वाले भी होते हैं। अब मार्गणाओं में बात चली है, तो नारकियों में तो बता दिया, नारकियों में तो एक ही विकल्प होगा ना कि सत्ता वाले ही है, असत्ता वाले कोई नहीं पाए जाएंगे। तिर्यंच गति में बात, यहाँ मान लें मेरे ख्याल से काल की बात चल रही है, समुत्कीर्तना तो हो गई थी अपनी, कालानुगम की बात चल रही, 27 पृष्ठ से काल की बात चल रही थी। तो काल में ओघ के ने सामान्य कथन क्या कहा कि मोहनीय विभक्ति का कितना काल है, तो अभव्यों की अपेक्षा तो अनादि अनंत है, और बाकी जो है तो अनादि शांत हो जाता है, अंत हो गया विभक्ति का काल, अनादि शांत। और अविभक्ति का काल पूछेंगे तो सादी अनंत, ख्याल है ना, क्योंकि उसका क्षय कर दिया है तो उसके आदि है, और अनंत काल तक वैसे ही रहेगी। और फिर अलग अलग मार्गणाओं में घटित कर रहे, नरक गति में क्या होगा, विभक्ति का काल। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही कि एक जीव की, तो एक जीव की अपेक्षा कितना होगा, तो जितना नरक का काल होगा उतना। तो जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागर। ये तो जनरल कथन कर दिया, सामान्य। हर एक नरक के बारे में अगर अलग अलग पूछेंगे तो हर एक नरक की जो जघन्य आयु है उसको वहाँ का जघन्य काल कहेंगे। जैसे पहले की है 10,000 वर्ष, दूसरे की 1 सागर और 1 समय, इस तरह से आगे आगे सातों नरकों की हमने कल देखे थे। अब तिर्यंच गति की बात शुरू होती है। तो पहले में पहले सामान्य से जघन्य काल कितना है और उत्कृष्ट कितना है, तो तिर्यंच को जघन्य, तिर्यंच में जघन्य भव कितना हो सकता है, शूद्र भव, तो जघन्य उतना होगा और उत्कृष्ट 3 पल्य। तो मोहिनी की सत्ता सहित वाले जीव चल रहे, तो उसकी बात वहां बताई। तो क्षुद्र भव जब कहते हैं, तिर्यंच गति है तो अन्य गति से उसमें आना चाहिए। तो अन्य कौन से गति से आ सकता है क्षुद्र भव में, मनुष्य गति, क्योंकि देव और नार की क्षुद्र भव ने अपर्याप्त नामकर्म ही नहीं बांधते, तो अपर्याप्त की आयु उनके नहीं पाई जाती। तो मनुष्य में से ये क्षुद्र भव में आया हुआ जीव चाहिए, और वो क्षुद्र भव के बाद फिर कहाँ चला जाना चाहिए, अन्य गति में। अन्य कौन से गति में जा सकेगा, सुशीला बेन? मनुष्य में ही, क्योंकि अपर्याप्त जीव देव और नारकी की आयु नहीं बांध सकता। तो जाएगा फिर, क्योंकि हमको तिर्यंच गति में रहने का मिनिमम कम से कम जघन्य काल चाहिए। मोहिनी की सत्ता और तिर्यंच गति, कम से कम काल कौन सा, तो ये जो अपर्याप्त भव है, लब्धि अपर्याप्त, उसको यहाँ लिया। और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कितना हो सकता है, तो उनमें भी हमने देखे थे कि नरक, सॉरी, तिर्यंच गति में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, गति में रहने, एक भव नहीं लेना वहां। नरक में तो लगातार एक ज्यादा भव नहीं हो सकते है, एक ही भव होगा, तो वहां तो 33 सागर लिया था। अब तिर्यंच में तो लगातार तिर्यंच 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 हो सकता है, हाँ, 2000 सागर। तो आप त्रस की स्थिति बता रहे हैं हमें, तो तिर्यंच एक इंद्रिय भी तिर्यंच है कि नहीं है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, तिर्यंच गति में रहने का उत्कृष्ट काल, फिर वो अन्य गति में चला जाएगा। तो उसमें सामान्य तिर्यंच की अपेक्षा लिया, फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच में जब घटित करेंगे तो पंचेंद्रिय तिर्यंच में वो घटित होगा। देखो पंचेंद्रिय में भी पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो प्रकार से घटित किया, पंचेंद्रिय और तिर्यंच होना चाहिए, अकेले त्रस की स्थिति भी उसके लिए लागू नहीं होगी। देव नारकी मनुष्य तीनों आ जाएंगे। यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच की स्थिति उत्कृष्ट कितनी हो सकती है, तो कल हमने बहुत अलग अलग पद्धति से उसको घटित किया था, संगी असंगी दोनों को लेना है। तो सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच ऐसा कहेंगे तो उसमें तीनों वेद वाले और पर्याप्त पर्याप्त सब लेना, तो उसमें 95 पूर्वकोटि और 1 3 पल्ले वाला लास्ट का अंतिम भाव, सबको मिलकर पृथक्त्व कोटि पूर्व ऐसा कहा, और 3 पल्ले, यानी 3 पल्ले से अधिक पृथक्त्व कोटि पूर्व। ये पृथक्त्व की संख्या कितनी है वो वहां बताई। अभी अकेले पर्याप्तों में अगर घटित करने हैं तो उसमें तो 48, देखिए 48 भव हो गए, 48 में अंतिम भव हमको वो पल्ले वाला रखना है, तो वहां 47 हो जाएगा। तिर्यंचनी में घटित करने हैं तो उसके तो 16 हो गए योनिमति में, तो 15 पूर्व कोटि, क्योंकि संगी के भी और असंगी के भी लेने हैं, मात्र संगी के 8 हो जाएगी और असंगी के 8, तो 8 8 16 होते हैं, परंतु अंतिम भव हमें पल्ले वाला लेना है, 3 पल्ले वाला, इसलिए 15 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ले। ये कैसे होता है वो सब हमने देखा भी था। अब नीचे से चौथी लाइन 29 पृष्ठ पर, योनिमति पर्याप्त तिर्यंचों में, 29 पृष्ठ है नीचे से चौथी लाइन, अभी नीचे से तीसरी लाइन में आएंगे। असंगी की अपेक्षा 8 और संगी की अपेक्षा 7 पूर्व कोटियों का ही विधान करना चाहिए, क्योंकि इनके स्त्री वेद के अतिरिक्त दूसरा वेद नहीं पाया जाता है। संगी के साथ ही क्यों लिए? भोग भूमि उत्पन्न करना है भोग भूमि में, तो सात तो पूर्व कोटि के भव और फिर आठवां तीन पल्ले का भव, इसलिए उसके आठ और इसके साथ लिए। इस प्रकार योनिमति पर्याप्त तिर्यंचों में परिभ्रमण का काल, यानी अधिक से अधिक कोई जीव उन्हीं पर्यायों में जन्मता रहे मरता रहे, तो पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले प्राप्त होता है। सबके लिए सामान्य कथन पूर्व कोटि पृथक्त्व है, परंतु वो पृथक्त्व की जो कीमत है, संख्या है, वैल्यू है, वो अलग अलग है। वो हमने 95 पूर्व कोटि से लेकर अभी 15 पूर्व कोटि तक देखे, अलग अलग जो विकल्प। इसी अपेक्षा से उक्त तीनों प्रकार के जीवों में तीन कौन कौन से लिए? योनिमति, हाँ, पंचेंद्रिय लिया, अकेले पंचेंद्रिय लिया, यानी सामान्य पंचेंद्रिय हो जाते हैं, तिर्यंच सामान्य नहीं लेना, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और योनिमति तिर्यंच, ये तीन प्रकार। तो तीनों ही प्रकार के जीवों में मोहनीय का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य कहा, यानी हर एक जगह उसकी पृथक्त्व की संख्या अलग अलग है, वो भी बता चुके। यहाँ पृथक्त्व का अर्थ तीन से ऊपर और नौ से नीचे की संख्या न लेकर विपुल लेना चाहिए। पृथक्त्व अर्थ विपुल, यानी अनेक अनेक पूर्व कोटि। अब और एक विकल्प रह गया, पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धिय पर्याप्त। पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धिय पर्याप्तों में मोहनीय विभक्ति का कितना काल है? तो जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण, खुद्दा यानी क्षुद्र भव ग्रहण। क्षुद्र भव ग्रहण का अर्थ क्या होता है? लब्धिय पर्याप्त की जो छोटी में छोटी आयु है, एक श्वास में 8-10 बार जो कहते हैं, 18 बार श्वास के 18वें भाग, इतनी उनकी अल्प आयु है, तो जघन्य काल उसका उतना होगा। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धिय पर्याप्त कहते हैं, जैसे हमने सामान्य तिर्यंचों में मनुष्य गति में से वहां उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धिय पर्याप्त जब कहेंगे तो कहां से उनमें आना चाहिए? बोलो अरविंद भाई, लब्धिय पर्याप्त के। हाँ, लब्धिय पर्याप्त तिर्यंच को छोड़कर अन्य कहीं से भी, तिर्यंच में से भी आ सकता है, मनुष्य में भी से आ सकता है, क्योंकि अन्य पर्याप्त अपर्याप्त तिर्यंच भी पंचेंद्रिय लब्धिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हो सकते हैं। देवगति को नहीं लेना, दो ही गति, क्योंकि देवदार की तो लब्धिय पर्याप्तकों में आते ही नहीं है। तो जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इन्हें लगातार अपर्याप्त 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 पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त होता रहे, कौन सा? तिर्यंच। तो मुझे बताओ लगातार कितने भव हो गए एक अंतर्मूर्त में? यहां किसकी बात चल रही है? पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त की बात चल रही है। बोलो, हाँ, 80 तो किसी है? द्विंद्रिय के 80 है, द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के 80 है, चतुरिंद्रिय के द्विंद्रिय के उल्टा जाना है, और तीनद्रिय के 60, चतुरिंद्रिय के 40, और पंचेंद्रिय के कितने? 24 है, परंतु पंचेंद्रियों में मनुष्य को भी लेना है। अब मनुष्य को काट दो, उसके निकालो, उसको 8 तो उसके चले गए, तो संगी के 8 और असंगी के 8 होते हैं एक अंतर्मूर्त में लगातार। तो उसमें लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय लेने हैं, तो संगी लब्धि अपर्याप्त के 8 और असंगी के 8, तो 16 ही लगातार हो सकेगी, यानी वो वही काल मिलकर अंतर्मूर्त होगा, इसलिए उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बताया। इसी प्रकार मनुष्य लब्धि अपर्याप्त, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त और त्रस लब्धि अपर्याप्त जीवों के भी, क्या इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त कहा, पहले हम जो देख रहे थे तो पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त देख रहे थे, तिर्यंचों में पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, यही फॉर्मूला मनुष्यों के बारे में भी लगेगा। मनुष्य लब्धि अपर्याप्त भी, उसमें भी जघन्य काल कितना होगा? एक शुद्र भव, और अधिक से अधिक उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, कैसे? लगातार आठ भव हो गए अंतर्मूर्त में, मनुष्य लब्धि अपर्याप्त। दूसरा कौन सा? पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त। जब पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त कहते हैं तो मनुष्य और तिर्यंचों के पंचे जो लब्धि अपर्याप्त है, तिर्यंचों में तो पंचेंद्रिय के लब्धि अपर्याप्त और मनुष्य तो पंचेंद्रिय ही होते हैं, दोनों को मिलकर कितने होते? तो 24 भव होते अंतर्मूर्त, तो उनका भी इकट्ठा काल एक अंतर्मूर्त हो जाएगा। तो उन जीवों में त्रस लब्धि अपर्याप्त में कौन कौन आएंगे? द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेन्द्रिय असंगी संगी, ये सब तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त और मनुष्य लब्धि अपर्याप्त, तो इनका भी इकट्ठा काल कितना होगा? अधिक से अधिक अंतर्मूर्त और कम से कम एक शुद्र भव ग्रहण। तो इनका भी मोहनीय कर्म का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहना चाहिए। त्रस के अगर लेने हैं तो त्रस क्या भी नहीं, हमने 62,66,132 एकेंद्रियों के लिए थे, उनके अलावा बाकी जो है टोटल कितने देखे थे? 66,336, उसमें से 66,132 इनके चले गए, तो 204 रह गए ना, कितने रहे? तो त्रसों के इतने हो जाएंगे, द्विंद्रिय के 80, तीन्द्रिय के 60, चतुरिंद्रिय के 40 और पंचेंद्रियों के 24, ये त्रसों के हो जाएंगे, फिर भी सब मिलकर अंतर्मूर्त ही काल होता। विशेषार्थ, उक्त गति के जीव लब्धि पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा कम से कम खुद्दा भोग ग्रहण काल तक विवक्षित पर्याय में रहकर अन्य गति को चले जाते हैं, तथा अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल तक रहकर अन्य गति को चले जाते, कम से कम एक खुद भरोण और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त, अन्य गति में यानी अभी यहाँ अपर्याप्त है तो मनुष्य गति में चले जाएंगे, क्योंकि विवक्षित पर्याय में लगातार आगमोक्त, आगमोक्त का अर्थ क्या है? आगम में बताया हुआ संख्यात खुद्दा भवों के ग्रहण करने पर भी, जो अभी हमने उनकी संख्या कितनी है वो देखी, संख्या थे ना, असंख्या तो नहीं है, संख्या थे अंतर्मूर्त में, उनके काल का जोड़ अंतर्मूर्त से अधिक नहीं होता, यानी लगातार इतने भव करेंगे तो भी वो अंतर्मूर्त के भी उतना ही, एक अंतर्मूर्त ही काल होता है। इसी अपेक्षा से यहाँ मोहनीय का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। ये खुद हर एक के लिए अलग अलग आए, जब पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त तक लेंगे तो संगी असंगी के मिलकर 16 हो जाएंगे, और संगी के अकेले लेंगे तो 8 हो गए, मनुष्यों के लेते हैं तो उसके भी 8 होते हैं, लब्धि अपर्याप्त होंगे। खुद्दा भव ग्रहण का काल भी अंतर्मूर्त है पर वो छोटा है, पर्याप्तों के अंतर्मूर्त से भी बहुत छोटा है, इसलिए उसको खुद्दा भव ग्रहण इतना ही कहते हैं, अलग से समझाने के। अब ये तिर्यंच गति की बात हुई, अब मनुष्य गति की बात। मनुष्यों में कौन कौन से भेद करते हैं हम? आलाप यानी कथन, एक तो सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, फिर मनुष्यनी कहो या योनिमति कहो, और लब्धि अपर्याप्त। तो पहले सामान्य में कथन करेंगे। मनुष्य गति में सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी के मोहनीय विभक्ति का काल क्रमशः पंचेंद्रिय सामान्य तिर्यंच, पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच और योनिमति पंचेंद्रिय तिर्यंच, इन तीनों के अनुसार कहे गए काल के समान जघन्य से अंतर्मूर्त 14 नंबर पृष्ठ पर शुद्धि पत्र लिखा है, पेज नंबर 30, जगन्य से अंतर्मूर्त। तो जगन्य से खुदा व ग्रहण अंतर्मूर्त और अंतर्मूर्त। हाँ, जगन्य से खुदा भव ग्रहण। जगन्य से यहाँ ऐड करना खुदा भव ग्रहण कौमा, फिर एक बार अंतर्मूर्त, फिर कौमा, और लास्ट वाला अंतर्मूर्त यहाँ है ही। क्या ऐड करना समझ में आया? जगन्य से लिखा ना, काल के समान जगन्य से खुदा भव ग्रहण कौमा लगाना, अंतर्मूर्त लिखना, फिर कौमा लगाना और अंतर्मूर्त, और दो बार अंतर्मूर्त। क्यों? क्योंकि एक सामान्य मनुष्य है, एक पर्याप्त मनुष्य है, और योनिमति मनुष्य है। तो सामान्य मनुष्यों के लिए खुदा भोग्रहण, पर्याप्त मनुष्यों के लिए अंतर्मूर्त, और योनिमति के लिए भी अंतर्मूर्त। क्योंकि पर्याप्त और योनिमति ये दोनों ही पर्याप्तों के भेद है, तो पर्याप्तों में जघन्य आयु अंतर्मूर्त होती है, इसलिए वहां अंतर्मूर्त लिखा। और उत्कृष्ट कितनी होगी वो अभी बता रहे हैं। और उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्ले समझना चाहिए। अब पर्याप्त मनुष्यों में कितने पूर्व कोटि हो गए? हमने पंचेंद्रीय तीर्यंचों में कितने घटित किए थे? 95 पूर्व कोटि और एक तीन पल्ले की आयु। यहाँ कितने लेना? बोलो जोशी साहब, बोलो, थोड़ा हिसाब लगा। पंचेंद्रिय तीर्यन जब गए थे तो संगी और असंगी दोनों को लेना पड़ा, संगी के तीन वेद वाले और असंगी के तीन वेद वाले। हाँ, और यहाँ कितने लेने हैं? अभी यहाँ तो मनुष्य है ना, तो तीन वेद वालों की अपेक्षा लेने हैं, तो तीन वेद वालों में, और फिर बीच में एक एक सामान्य में। हाँ, एक अपर्याप्त लेना, सामान्य लेने हैं यहाँ पर। सामान्य मनुष्यों में एक अपर्याप्त का भाव करना है बीच में, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लेना है सामान्य मनुष्यों में। तो वहां प्रत्येक वेद वाले के 16-16 हो जाएंगे, 37-48, उसमें से 47 लेना, और अंतिम तीन पल्ले का रखना। क्या लाए ना? और पर्याप्त मनुष्यों के लिए, हाँ, 8 × 3=24 होते, तो उसमें से 23 रखना है, और योनिमति के लिए 7 ही रखना, और आठवां भव भोगभूमि का रखना। सबको मिलकर कथन क्या होगा? पूर्व कोटि पृथक्त से अधिक तीन पल्ले। उक्त तीनों प्रकार के मनुष्यों के मोहनीय अविभक्ति का काल कितना है? अविभक्ति यानी मोहनीय की सत्ता जिनके नहीं है, ऐसा कितना है? तो जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्व कोटि है। मनुष्य गति में रहते हुए का काल पूछा है, इसलिए यहाँ सादी अनंत नहीं कहा, क्योंकि 14वें तक ही मनुष्य गति है। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं? मोनी का अविभक्ति का काल यानी 12वां, 13वां और 14वां गुणस्थान। सत्ता नाश हुई है, ऐसे गुणस्थान कौन से? 12वां, 13वां, 14वां। तो उसमें कम से कम काल कितने काल तक जीव रहेगा? अंतर्मूर्त। तीनों को ही मिलकर अंतर्मूर्त हो सकता है। 12वें का तो अंतर्मूर्त है ही, 14वें का भी अंतर्मूर्त है, तो कोई कोई 13वें में भी अंतर्मूर्त ही रहकर चले जाते आगे। तो उस अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कितना होगा? देशोन पूर्व, देशों ने कुछ कम पूर्व कोटि। कुछ कम पूर्व कोटि कैसे? 8 साल के बाद संयम अंगीकार किया, केवल ज्ञान भी उत्पन्न हुआ, यानी क्षपक श्रेणी में चढ़ा, 12वां गुणस्थान प्राप्त होते ही वो मोहनीय का अविभक्ति का काल शुरू हो गया। फिर 13वां गुणस्थान पूरे पूर्व कोटि में जितने बाकी अभी शेष बाकी थे उतने तक चला, और 14वां गुणस्थान होकर सिद्ध हो गए। तो मनुष्य गति में उर्वरित काल कितना है जिसमें मोहनी की सत्ता नहीं है? तो उसको कहते कुछ कम पूर्व कोटि। उसी को कहते देशोन, देश उन पूर्व कोटि। विशेषार्थ, मनुष्य गति के जीव संगी ही होते हैं, इसलिए तिर्यंचों में असंगियों की अपेक्षा अपेदन्या हुआ अपेक्षा जो पूर्व कोटियां कही है वे यहां नहीं कहना चाहिए, वहां हमने 95 कही थी तो वो यहां नहीं कह सकते। अतः उन्हें अलग कर देने पर सामान्य मनुष्यों में 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य, ये कैसे गठित किया हमने देखा ना, 3 वेद वाले हैं, लगातार एक किसी वेद में रहने का 8 उसके भव होते हैं, बीच में एक अपर्याप्त अवस्था होगी तो फिर दोबारा 8 भव होगी, तो एक एक वेद वाले के 16-16 हो जाएंगे, इस तरह से 48 हो सकते हैं। उसमें अंतिम भव हमें 3 पल्ले वाला भोग भूमिका रखना है, इसलिए 47 पूर्व कोटि हो गए। अभी अपर्याप्तों को बीच में नहीं लेना है, तो अकेले पर्याप्त के कितने हो गए, तीनों में 8-8-8 हो गए, तो पर्याप्त मनुष्यों में 23 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य, यानी 8 + 3 = 24, 24वां भव उसमें पूर्व कोटि इसमें पल्ले वाला करना है, 3 पल्ले वाला। पर्याप्त में 23 वहां लिखा है ना, 8, 8 और 8, नपुसक वेदी, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी, 8 के बाद एक अपर्याप्त नहीं, वो पहले वाली पूछ रहे, अपर्याप्तों की पूछ रहे, अपर्याप्तों को यहाँ 23 में नहीं लेने हैं, पहले वाले ही पूछ रहे। हाँ, लगातार 24 अपर्याप्त, कहीं से भी ले सकते हैं ना। अच्छा, लगातार 24 करो तीनों वेद वाले, फिर अपर्याप्त का एक भव, और फिर लगातार 24, तीन वेद, स्त्री वेद के 8, नपुसक वेद के 8, पुरुष वेद के 8, ये लगातार भव है। पर्याप्तों की मैं बात करूं, अपर्याप्त का एक ही लिया, हाँ वो उसी में समझ लेना, हाँ वो अंतर्मूर्त उसी में गिनना। अभी मनुष्यनियों में यानी स्त्री वेदी वाले 7 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है, तथा जघन्य काल उक्त तीनों प्रकार के मनुष्यों का खुद्दा भव ग्रहण व अंतर्मूर्त है। खुद्दा भव ग्रहण किसके लिए कहा, सामान्य मनुष्यों के लिए, और अंतर्मूर्त कहा वो दोनों के लिए, पर्याप्त और मनुष्यनी, क्योंकि कोई एक जीव अन्य गति से आकर अन्य गति से आना चाहिए, क्योंकि मनुष्य गति का उत्कृष्ट या जघन्य काल हमको लेना है, तो अन्य कौन से गति से आ सकता है मनुष्यों में, हाँ तीनों, और तीनों गति से लेना है, चारों नहीं लेना, क्योंकि मनुष्य में से मनुष्य में आए तो उसका पहले से काल गिनना पड़ेगा। तो अन्य गति से आकर उक्त तीन प्रकार के मनुष्यों में से किसी एक में उत्पन्न होकर तथा उक्त काल तक रहकर यदि अन्य गति को चला जाए तो जघन्य काल उक्त प्रमाण ही प्राप्त होता है, और यदि खुद्दा भव ग्रहण में लाना है उसको तो तिर्यंच गति से लाना पड़ेगा, क्योंकि देव तो हो गए नहीं अपर्याप्त। इसी अपेक्षा से उक्त तीन प्रकार के मनुष्यों में मोहनीय कर्म का जघन्य काल, खुद्दा भव ग्रहण व अंतर्मूर्त, ये दोनों को मिलकर अंतर्मूर्त कह दिया, दोनों के ही अपने अपने अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्य कहा है। उक्त तीनों दोनों हुआ, उक्त तीनों प्रकार के मनुष्यों में मोहनीय के असत्व का जघन्य काल, असत्व कब होगा, 12वें गुण स्थान में शुरू होगा। जघन्य काल अंतर्मूर्त कहने का कारण यह है, किसी एक क्षीण कषायी मनुष्य के सहयोगी होकर अंतर्मूर्त काल तक रहकर समुद्घात कर और योग निरोध के साथ अयोगी होकर मोक्ष चले जाने में जितना काल लगता है उस सब का योग भी, योग यानी जोड़ यानी उसके सब को टोटल अंतर्मूर्त ही होता है। तथा मुनि कर्म के अभाव का उत्कृष्ट काल देशों पूर्व कोटि कहने का कारण यह है, किसी एक मनुष्य ने गर्भ से लेकर 8 वर्ष की अवस्था होने पर संयम को प्राप्त किया और अंतर्मूर्त प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में रहा। ये तो नियम है कि वो हजारों बार प्रमत्त अप्रमत्त होगा फिर श्रेणी चढ़ेगा। अनंतर अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय में एक एक अंतर्मूर्त रहकर क्षीण मोह हो गया। इस प्रकार क्षीण मोह होने तक 6 अंतर्मूर्त होते हैं, तो भी इनका योग एक अंतर्मूर्त होता है। इस प्रकार एक पूर्व कोटि में से 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम कर देने पर मोहनीय कर्म के असत्व के साथ मनुष्य पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल देशों पूर्व कोटि प्राप्त हो जाता है। अब देवों में, जैसे नारकियों में घटित किया था, देव का जघन्य काल और देवों का उत्कृष्ट काल। देवों में मोहनीय विभक्ति का काल नारकियों के समान है। इतनी विशेषता है कि भवनवासियों से लेकर सर्वार्थ करो उसको सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मोहनीय कर्म का जघन्य और उत्कृष्ट काल क्रम से अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। हर स्वर्ग में अपना अपना जघन्य काल अलग होगा और हर स्वर्ग का अपना अपना उत्कृष्ट काल अलग होगा। वह इस प्रकार है, भवनवासियों से लेकर सर्वार्ध सिद्धि तक के देवों में मोहनी विभक्ति का कितना काल है, तो भवनवासियों में 10,000 वर्ष, व्यंतरों में 10,000 वर्ष, ज्योतिषियों में पल्ले के 8वें भाग प्रमाण, ये उनकी मिनिमम आयु ज्योतिषियों की। सौधर्म ऐशान कल्प में साधिक पल्य, सनत कुमार माहेंद्र में साधिक 2 सागर, ये जो सौधर्म ईशान की सामान्य से जो 2,000 सागर जो अधिक से अधिक आए है, अभी घातायुष्क की अपेक्षा ज्यादा होती है परंतु वो विकल्प ऊपर भी पॉसिबल है, इसलिए यहाँ तो उतने ही लिया। यहाँ तो जघन्य गिना रहे, उत्कृष्ट नहीं गिना रहे। उत्कृष्ट में उसकी कब बात करेंगे, यहाँ जघन्य बात कर रहे। तो यहाँ सनत कुमार महेंद्र की साधिक 2 सागर ने 2 सागर प्लस 1 समय, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में साधिक 7 सागर, लांतव कापिष्ट में साधिक 10 सागर, शुक्र महाशुक्र में साधिक 14 सागर, शतार सहस्रार में साधिक 16 सागर, आनत प्राणत में साधिक 18 सागर, आरण अच्युत में साधिक 20 सागर, नव ग्रहकों में क्रम से साधिक 22, साधिक 23, साधिक 24, साधिक 25, साधिक 26, साधिक 27, साधिक 28, साधिक 29 और साधिक 30 सागर, ये जघन्य है। हम जब उत्कृष्ट गिनते तो 31 सागर गिनते हैं ग्रहवेग की, यहाँ जघन्य गिन रहे हैं। अंतिम ग्रहवेग की जघन्य आयु साधिक 30, नव अनुदिशों में साधिक 31 सागर, 4 अनुत्तरों में साधिक 32 सागर प्रमाण जघन्य काल है। और उत्कृष्ट काल भवनत्रिक में, ये सर्वार्थ सिद्धि को क्यों छोड़ा वहां? हाँ, हाँ उसमें तो 33 सागर की ही आयु है। अब उत्कृष्ट काल हरेक का गिना रहे, जैसे हमने भवनत्रिक में वहां 10,000 वर्ष देखा था, तो भवनत्रिक में क्रमशः साधिक 1 सागर, साधिक पल्य किसके व्यंतर के लिए, साधिक पल्य ज्योतिष के लिए, 16 स्वर्गों में साधिक 2 सागर। अब यहाँ साधिक का प्रमाण ज्यादा होगा घातायुष्क की अपेक्षा, यानी 2.5 सागर, आधा सागर भी ज्यादा, अंतर्मूर्त कम आधा सागर ज़्यादा हो जाता है उसमें, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर। ये साधिक का प्रमाण कहाँ तक होगा? 18 सागर तक ही हम कहेंगे, 18 के ऊपर वो साधिक नहीं होगा। 18 तक साधिक कहेंगे, सहस्रार तक, फिर उसके ऊपर साधिक शब्द नहीं डालेंगे, क्योंकि घाता युष्क वाले जो है अधिक ऊपर की आयु बांधी है और घाता युष्क होकर नीचे की हो जाती है, तो नीचे के स्वर्गों में अधिक आयु से रह जाते हैं। ये तो सहस्रार तक होता है, उसके ऊपर नहीं होता। अधिक आयु बांधी है देव की, और बाद में परिणाम ऐसे हो गए कि उसमें तो आयु कम हो जाती है, घात हो जाता है आयु में। जब पहले पहले की भव में ही इस भव संबंधी घात होता है, इसी भव में घात होगा, बुज्जमान में घात होगा तो उसको कदली घात कहते हैं, वो नहीं है। घातायुष का पूर्व भव में उन्होंने वो आयु का घात किया है, तो सम्यक दृष्टि में वो आधा सागर ज्यादा है, नीचे की ऊपर की बांधी थी मान लेते, सात सागर की बांधी थी, अब फिर वो घट गई तो नीचे के स्वर्ग की हो गई। अभी नीचे के स्वर्ग में दो सागर ज्यादा है, उसमें आधा सागर बढ़ गई। मिथ्या दृष्टि हो गई तो पल्ले का कुछ, पल्ले में कुछ कम है ना, पल्ले का असंख्या तो अभाग इतनी वो रह जाती ज्यादा। साधिक, हाँ, साधिक 14 सागर, साधिक 16 सागर, साधिक 18 सागर, ये सहस्रार तक हो गए। फिर 20 सागर, अब यहाँ साधिक नहीं होगा, वहां की जितनी उतनी रहती, वहां घातायुष्क वाले नहीं होते। फिर 22 सागर, नौ ग्रहवेकों में क्रम से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 सागर, यानी 23 से लेकर 31 सागर तक। नौ अनुदिशों में अधिक से अधिक 32 सागर और 5 अनुत्तरों में 33। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का भेद नहीं पाया जाता, वहाँ सभी के सभी 33 सागर वाले। परंतु उसके बाजू के जो चार विमान हैं, कौन कौन से मालूम है? हाँ, विजय, वैजयंत, अपराजित और कौन सा रह गया? विजय, जयंत रह गया, जयंत, वैजयंत, विजय, जयंत, वैजयंत और अपराजित, उनमें कम से कम 32 सागर और एक समय, और अधिक से अधिक 33 सागर। विशेषण, यहाँ नारकियों के काल के समान जो देवों में मोहनीय कर्म का काल कहा है, वह सामान्य की अपेक्षा से है, क्योंकि दोनों गतियों में जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 33 सागर प्रमाण होती है। विशेष की अपेक्षा, विशेष यानी देवों के जो भेद गिनाए, विशेष की अपेक्षा तो देवों के जिस भेद में जहाँ जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति हो, वहाँ मोहनीय कर्म का उतना जघन्य और उत्कृष्ट काल समझना चाहिए, जिसका कि ऊपर उल्लेख किया ही गया है। ये गति मार्गणा हो गई। अब इंद्रिय मार्गणा में, इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद है? हाँ, कौन से छे? वो काय मार्गणा बता रहे आप? पांच है ना इंद्रिय जाति, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये पांच भेद हो गए उसमें। अब हम उसके, हाँ कोई बात नहीं। तो इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से सामान्य एकेंद्रिय, अभी एकेंद्रियों के भी भेद करेंगे। सामान्य एकेंद्रिय ने सभी एकेंद्रिय हो गए, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त वगैरह कोई भेद नहीं करेंगे। तो सामान्य एकेंद्रिय, फिर भेद करने पर बादर एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय, फिर बादर और सूक्ष्म में भी पर्याप्त अपर्याप्त भेद करेंगे। तो बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त। उसके बाद सभी विकलेंद्रिय, यानी कौन कौन से? द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, और उनके पर्याप्त अपर्याप्त। अब यहाँ काय वालों को भी ले लिया, पांचों स्थावर काय, क्योंकि उनमें भी यही आलाप होगा, यही कथन होगा। एकेंद्रियों में जो बात कहेंगे तो स्थावर काय की अपेक्षा भी वही कथन होगा। तो पांचों स्थावर काय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा सभी बादर और सूक्ष्मों के पर्याप्त अपर्याप्त, इनका खुद्दा बंध में जो काल बताया है वही इनमें मोहिनी विभक्ति का काल समझना चाहिए। विशेषार्थ खुद्दा बंध ये जो हमने पहले हाँ पुस्तक साथ हाँ खंड दो धौला में खुद्दा बंध में सामान्य एक इंद्रियों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण, क्योंकि वो तो क्षुद्र भव ग्रहण इतना ही लेना, सामान्य एक इंद्रिय लिया यानी लब्धि पर्याप्त का जितना काल है उतना लेना, और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण बताया है। सामान्य एक इंद्रिय में एक बार जीव गया तो अधिक से अधिक कितना काल रुलेगा, हाँ तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों के समयों की यदि गणना की जाए तो उसका प्रमाण अनंत होता है। अब बादर एक इंद्रियों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण, अभी सामान्य एक इंद्रियों में मिनिमम काल कितना खुद्दा भव और अधिक से अधिक असंख्यात पुद्गल परावर्तन, अब बादर का बता रहे, बादर एक इंद्रियों का यानी हर सभी में बादर में जन्म लेते हैं, सूक्ष्म में नहीं जाएगा अकेले बादर, तो बादर एक इंद्रियों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाया है। ये अंगुल का असंख्यात वा भाग यहाँ बता रहे क्षेत्र और उनको कहना है समयों की संख्या, तो अंगुल के असंख्यातवे भाग में जितने प्रदेश है उतने समय वो कितने होते हैं, तो उसमें तो असंख्यात अवसर्पिणी चली जाती है। हमें लगता है अंगुल है ना, अंगुल में क्या होगा, अरे पल्ले तो कितना बड़ा है, ये अंगुल कितना छोटा है कि नहीं, तो पल्लों में तो हम रोमखंड गिनते हैं, उनसे यहाँ प्रदेशों की संख्या असंख्यात गुना है, क्योंकि जिस वर्ग स्थान पर पल्ले आता है, हमने द्विरूप वर्ग धारा देखी थी, उसमें क्या था, दो का वर्ग चार से शुरू किया था, चार का वर्ग 16 का वर्ग 256 का वर्ग 50 आदि आदि आदि, तो असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले नाम की संख्या आई। पल्ले के आगे मान लेते हम 100वें स्थान पर पल्ले आया होगा, होता तो असंख्यातवे स्थान पर, तो आगे उतने ही स्थान और चले जाए, पल्ले का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग, तब जाके अंगुल आता है, यानी अंगुल में प्रदेशों की संख्या बहुत असंख्यात गुना है, तो उसके असंख्यातवे भाग जितने प्रदेश है ना उसमें, उतने अगर हम समयों को इकट्ठा गिनेंगे तो कितना होता है, तो असंख्यात कल्पकाल बीत जाते उसमें, एक कल्पकाल कितना बड़ा है, 20 कोड़ाकोड़ी सागरों का। तो यहां हमें समयों की और प्रदेशों की सूक्ष्मता ख्याल में आती है। यहां ये लिखा ही आगे, अंगुल के असंख्यात वे भाग से असंख्याता संख्यात, वो खाली असंख्यात भी नहीं, क्योंकि असंख्यात के भी भेद है ना, कौन कौन से, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात, तो कहते असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणियों के काल का ग्रहण किया है। हमें वहां देवलाली में लिया तो ऐसा लगे ये संख्या जानने से क्या लाभ है, तो यहाँ तो हमें पता चलता है कितनी यानी वो काल कितना बड़ा होगा, उसका थोड़ा एहसास हो जाता है, खाली अंगुल कहेंगे पल्ले हाँ होगा कुछ माप होगा ऐसा लगता है ना। अब ये बादर एक इंद्रियों का हो गया, बादर एक इंद्रिय इन जनरल, बादर के पर्याप्त और अपर्याप्त करते रहे तो कितना काल तक बादर एक इंद्रिय में घूम सकता है, तो असंख्यात कल्पकाल, असंख्याता संख्यात कल्पकाल। अब बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों का हो, अकेले पर्याप्त जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष बतलाया है। जैसे बादर वो पर्याप्त वनस्पति में चला जाए या पृथ्वी का एक में चला जाए, हमने देखा 22,000 वर्ष वगैरह, तो लगातार सभी पर्याप्तों में घूमता रहे तो भी वो संख्यात हजार वर्ष ही होगा, मात्र पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त, तो बीच में पर्याप्त 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 करता रहे तो कितना काल, असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कल्पकाल, और मात्र पर्याप्त 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 बादर पर्याप्तों में घूमता रहे तो कितना कहा गया, कुछ संख्यात हजार वर्ष। अब बादर एक इंद्रिय अपर्याप्तों में अगर घूमता रहे तो तो बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त उनका जघन्यकाल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण ये सब में तो उतना ही होगा। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, देखो इसकी बात ख्याल में आती है, यदि मात्र एकेंद्रिय अपर्याप्तों में बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तों में लगातार घूमता रहे तो अंतर्मूर्त होगा, और बादर पर्याप्तों में एकेंद्रिय पर्याप्तों में मात्र पर्याप्त पर्याप्त घूमता रहे तो संख्यात हजार वर्ष, परंतु कभी पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त करता रहे तो असंख्यात असंख्यात कल्पकाल। ख्याल है? अब सूक्ष्म एकेंद्रियों की बात, बादर एकेंद्रिय सभी सभी प्रकार के एकेंद्रिय, पांचों प्रकार के सभी सभी, पर उसमें क्राइटेरिया क्या, बादर होना चाहिए। पहले सामान्य बादर की बात की, फिर बादर पर्याप्तों की अलग की, बादर अपर्याप्तों की अलग की, सामान्य फिर से बादर एकेंद्रिय को लिया था हमने स्टार्टिंग से, पांचों प्रकार के एकेंद्रिय सामान्य पर्याप्त पर्याप्त सब मिलकर, तो उसमें घूमने का काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। अभी उसमें हमने दो भेद किए, बादर को अलग निकाला सूक्ष्म को अलग निकाला, तो बादर में भी सामान्य से बादरों का काल कितना है, बादर एकेंद्रियों का, तो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी यानी अंगुल का असंख्यात भाग। अब बादर में दो भेद करेंगे, अकेले पर्याप्त बादर ही होता रहे एकेंद्रियों में, एकेंद्रिय पर्याप्त बादर, तो लगातार काल कितना है सब में, मिनिमम तो हमने खुद्दा भव ग्रहण किया, हमको यहां मैक्सिमम काल देखना है, हाँ संख्यात हजार वर्ष, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में संख्यात हजार वर्ष, और बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तों में लगातार घूमता रहे तो अंतर्मूर्त, क्योंकि हमने पूरे ही एकेंद्रियों के सभी गिनेंगे तो भी अंतर्मूर्त होता है, सभी 11 प्रकार के जो एकेंद्रिय है सबका टोटल कितनी की थी हमने, 66,132 की थी, उसमें सूक्ष्म के 5 और बादर के 6 भेद गिनाओ, क्योंकि उसमें निगोद और प्रत्येक वनस्पति को अलग निकालो, तो 11 प्रकार हो जाते हैं, तो 66,132 डिवाइडेड बाय 11, तो हर एक के खाते में 6,012 भव आएंगे, सबकी टोटल मिलकर भी अंतर्मूर्त होती है, इसलिए यहाँ क्या कहा, बादर अपर्याप्तों में लगातार घूमने का काल कितना है तो अंतर्मूर्त। यहां तक आए ना, अभी सूक्ष्मों का काल देखेंगे, अभी सूक्ष्म में पहले सामान्य काल बताएंगे, सूक्ष्म जो पर्याप्त भी और अपर्याप्त, परंतु कौन से सूक्ष्म 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 लगातार भव होता रहे। हाँ, आपका प्रश्न है सूक्ष्म एकेंद्रिय और निगोदीय अलग है क्या, क्या है, तो सूक्ष्म एकेंद्रिय जब कहते हैं तो पांचों प्रकार के सूक्ष्म एकेंद्रिय होते हैं, हाँ तो उसमें सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक तो निगोद ही होते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रियों में प्रत्येक वनस्पति नहीं है, वो सभी साधारण ही होती है सूक्ष्म, तो ये जो पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म एकेंद्रियों का यानी यह सामान्य की बात है, जघन्य काल कितना होगा, खुद्दा भव ग्रहण, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक। देखो इसकी जरा इमेजिन करो, अंगुल का असंख्यात भाग देखा हमने, तो उसमें कितनी असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जाएगी, अंगुल कितना छोटा है और पूरा लोक कितना बड़ा है, उसमें कितने प्रदेश हो गए, और एक लोक नहीं असंख्यात लोक, असंख्यात लोक में जितने प्रदेश हो गए उतने समय, तो वो काल कितना बड़ा हो जाता है, तो ये सूक्ष्म एकेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल, मात्र सूक्ष्म 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 पर्याप्त में भी जाएगा अपर्याप्त में भी जाएगा। अब कहेंगे सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त 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 होता रहे तो कहेंगे सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तों का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि पर्याप्तों में अंतर्मूर्त होता है, और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही बतलाया है। देखो ये जरा अभी सूक्ष्म की बात ख्याल में, देखो जघन्य भी अंतर्मूर्त पर्याप्त है ना, और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त पर्याप्तों में रहने का। अब सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तों का जघन्य काल, हाँ संख्या हजार लिए थे बादर में, हाँ अब यहाँ अपर्याप्तों में देख रहे हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जगन्य काल तो खुदा भव ग्रहण हर एक जगह लगाते हैं हम, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण बतलाया है। देखो फिर से, हाँ लगातार उसमें होते रहे सूक्ष्म सूक्ष्म भव, तो अनेक भव मिलकर भी अंतर्मूर्त ही होते हैं उसके। वहां बादर में कितने लिए थे हमने उत्कृष्ट काल, बादर पर्याप्तों में संख्यात हजार वर्ष, हाँ। अब यहाँ सूक्ष्म में पर्याप्तों में लगातार होते रहे तो भी अंतर्मूर्त, और सूक्ष्म में एकेंद्रीय में अपर्याप्तों में भी उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, वो तो हमने देखे थे अंतर्मूर्त 66,132 हो जाते हैं एकेंद्रियों के, फिर भी वो सब मिलकर अंतर्मूर्त। देखो ये अंतर्मूर्त और अंतर्मूर्त अकेले पर्याप्तों में, सूक्ष्म के पर्याप्तों में घूमता रहे तो भी अंतर्मूर्त, अकेले अपर्याप्तों में घूमता रहे तो भी अंतर्मूर्त, परंतु सूक्ष्म में ही जन्मता रहे, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त, तो कितना असंख्यात लोक प्रमाण काल। अकेले सूक्ष्म में असंख्यात लोक प्रमाण, और अकेले बादर में कितना देखा हमने अंगुल का असंख्यात अभाव, और बादर भी सूक्ष्म भी करता रहे यानी सभी एक इंद्रियों में घूमने का काल कितना है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन अनंत काल हो जाता है। एक एक में घूमने का काल अलग अलग बताया, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा उत्कृष्ट काल उसी में रहे, पर कोई जीव रहे तो कितना काल रहेगा उसकी ये लिमिट है। द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय ये सामान्य से कहेंगे, जब द्विंद्रिय कहते तो सामान्य द्विंद्रिय यानी उसमें पर्याप्त भी आए अपर्याप्त भी आए। उसके बाद द्विंद्रिय पर्याप्त तीन्द्रिय पर्याप्त और चतुरिंद्रिय पर्याप्त इन जीवों का जघन्य काल क्रमशः खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण, क्रमशः यानी जब सामान्य द्विंद्रिय सामान्य तीन्द्रिय सामान्य चतुरिंद्रिय कहेंगे तो उसमें लब्धि अपर्याप्त द्विंद्रिय भी आ गए और पर्याप्त द्विंद्रिय भी आ गए, तो उसमें जघन्य काल कितना होगा लब्धि अपर्याप्त यानी खुद्दा भव ग्रहण, और उत्कृष्ट कितना होगा पर्याप्तों का जघन्य काल अंतर्मूर्त होता है, कोई भी पर्याप्त है उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त होता है, तथा दोनों का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय सामान्य से ले लो या पर्याप्तों के, क्योंकि पर्याप्त की अपेक्षा ही वो उत्कृष्ट काल घटित होता है, तो वो कितना है संख्यात हजार वर्ष। अब द्विंद्रिय अपर्याप्त तीन्द्रिय अपर्याप्त और चतुरिंद्रिय अपर्याप्त जीवों का जघन्य काल उसमें एक भव लेना खुदा भव ग्रहण, और उत्कृष्ट काल में लगातार अपर्याप्त 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 हो गए तो कितना होगा द्विंद्रिय का कितना होगा 80 तो भव हुए, 80 भवों का जोड़ कितना हुआ एक अंतर्मूर्त, एक अंतर्मूर्त उत्कृष्ट काल एक अंतर्मूर्त ही होगा, भले उसमें भव कितने हो गए 80, खुदा भव ग्रहण करते तब एक भव हुआ, और ऐसे लगातार क्षुद्र भव ग्रहण होता रहे तो भी कितने हो सकते हैं द्विंद्रियों में 80, तीन्द्रियों में 60। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है, ये अंतर्मूर्त क्यों कहा है, एक अंतर्मूर्त में इतने ही भव हो गए उसके, नहीं नहीं सबका मिलकर टोटल काल अंतर्मूर्त हो जाएगा, एक है वो श्वास का 18वां भाग है उसको कहेंगे अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त से छोटे ना कि उतने आयु में फिर उसके त्रिभाग हो गए उसमें आयु बंधेगी वो अंतर्मूर्त रुकेगा फिर मरेगा, है तो अंतर्मूर्त वो इतना छोटा है और पर्याप्तों की अपेक्षा ये बहुत छोटा है, इसको बताने के लिए खुदा भव ग्रहण कहते हैं, परंतु वो भी अंतर्मूर्त तो है ही, वहां भी संख्यातावली काल तो होगा ही, शुद्र भव ग्रहण में भी संख्यातावली जितना काल तो रहेगा ही, वहां भी असंख्यात समयों का तो है, वो कुछ संख्यात समयों का तो है ही नहीं है, ये इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा हो गई बात। अब काय मार्गणा की अपेक्षा बताएंगे, अब चतुरिंद्रिय का पर्याप्तों का काल संख्यात हजार वर्ष, हर एक में अलग अलग होगी, एक एक के भाव कितना बड़ा से बड़ा हो सकता है, हमने देखा ना, वो तो द्विंद्रिय के अलग है, तीन्द्रिय के अलग है। हाँ उत्कृष्ट काल ने लगातार पर्याप्त 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 तो होते रहे तो उसका गिनना है, सब टोटल सभी द्विंद्रियों को मिलकर ऐसा। अब काय मार्गणा की अपेक्षा हम कैसे भेद करते हैं, पांच स्थावर काय कहते हैं और एक त्रस काय, वहां तो एक इंद्रियों की बात चतुर इंद्रिय तक वहां लिया था, पंच इंद्रिय तो पहले ही बता चुके थे, वो पंच इंद्रिय की बात बाद में आ जाएगी। फिर पहले बीच में उन्होंने पांच स्थावर काय लिखे थे क्योंकि वो एक इंद्रियों के साथ वो भी मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ काय मार्गणा की अपेक्षा वो काय वालों को भी यहाँ बता दिया। काय मार्गणा की अपेक्षा पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वायु कायिक जीवों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण, उसमें भी क्षुद्र भव होते हैं ना, सभी में होते हैं, अकेले निगोद में नहीं होते, सभी प्रकार के जीवों में होते हैं। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, जो हमने वहां एक इंद्रियों में घटित किया था। यहां सामान्य से पृथ्वी का एक लिए, बादर है क्या सूक्ष्म है उसकी चर्चा नहीं की थी। बादर पृथ्वी, बादर जल, बादर अग्नि, बादर वायु और बादर वनस्पति, प्रत्येक शरीर, इनका जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल कर्मस्थिति प्रमाण कहा है। कर्मस्थिति प्रमाण जब कहते हैं, नीचे लिखा ही है, कर्मस्थिति से 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण काल लेना चाहिए, बादर में रहने का काल, बादर पृथ्वी या बादर जल ऐसा। पहले जब हमने बादर एक इंद्रिय की जनरल बात की थी, देखो ये निकालो, बादर एक इंद्रियों की बात की थी, बादर एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग यानी असंख्यात असंख्यात कल्पकाल, परंतु यहाँ प्रत्येक का अलग अलग गिनाया। बादर पृथ्वी में उत्कृष्ट काल कितना है, बादर वनस्पति में कितना है, बादर जल में कितना है, तो उसको कहते हैं 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण। अभी बादर पृथ्वी पर्याप्त, उसमें पर्याप्तों का भेद डाल दिया, बादर पृथ्वी पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त और बादर वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों का जघन्य काल अंतर्मूर्त, पर्याप्त जीव है इसलिए जघन्य अंतर्मूर्त बताया। और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है। अब उसमें हरेक की अलग अलग आयु जो बताती है, उत्कृष्ट एक आयु, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 22,000 वर्ष, बादर जल का एक पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 7,000 वर्ष, बादर अग्नि का एक पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 3 दिन, बादर वायु का एक पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 3,000 वर्ष और बादर वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 10,000 वर्ष प्रमाण है। उत्कृष्ट आयु है एक भव, 22,000 वर्ष का एक भव, इसमें देखा हमने बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तों में। अब बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, बादर जल का एक अपर्याप्त, बादर अग्नि का एक अपर्याप्त, बादर वायु का एक अपर्याप्त, बादर वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण कहा है, यानी अपर्याप्त अपर्याप्त लगातार हो गए तो भी सबका जोड़ कितना है, अंतर्मूर्त है। हमने देखा ना एक एक के कितने हो गए, 6,012 हो सकते हैं, फिर भी उसका टोटल कितनी है, एक अंतर्मूर्त। सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, पहले हमने सूक्ष्म एक इंद्रिय इन जनरल बात की थी इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा, अब उसमें ये कायिकों की भेद डालेंगे एक इंद्रियों में तो कैसा होता है। सूक्ष्म पृथ्वी का एक, अकेले सूक्ष्म जीवों का कितना काल देखा हमने, लगातार सूक्ष्म 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 होता रहे तो असंख्यात लोग, तो अभी उसमें कायिकों के भेद डाले। सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म वायु कायिक और सूक्ष्म वनस्पति कायिक तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल, सूक्ष्म एकेंद्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्तों का काल जिस प्रकार ऊपर कहे आए हैं उस प्रकार समझना चाहिए। जैसे हमने वहाँ असंख्यात लोग कहा था, हाँ, और पर्याप्तों में उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, अपर्याप्त में भी उत्कृष्ट अंतर्मूर्त बताया। हाँ, इस प्रकार इन उपर्युक्त जीवों का जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वही यहाँ मोहनीय का जघन्य और उत्कृष्ट काल है। यहाँ काल तो मोहनीय का घटित कर रहे परंतु वो अपेक्षा उन जीवों की बताई, इसलिए उन जीवों की जो स्थिति जघन्य उत्कृष्ट है उसको बताना है। अब आगे पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त तथा त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों के, देखो इंद्रिय मार्गणा की बात शुरू की थी, एकेंद्रिय की, द्विंद्रिय की, तीनद्रिय की, चतुरिंद्रिय की बता दिए थे। एकेंद्रिय की अपेक्षा से वो पांच अलग अलग काय वाले भी बता दिए। अब पंचेंद्रियों की अपेक्षा बताएं इंद्रिय मार्गणा में और त्रस की बात बताएंगे काय मार्गणा की अपेक्षा, इसलिए यहां पंचेंद्रिय को भी लिया और त्रस को भी लिया। तो पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त तथा त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों के मोहनीय विभक्ति का कितना काल है, तो यहां भी पंचेंद्रियों में एक क्षुद्र भव ग्रहण, त्रसों में भी वैसा ही। तो पंचेंद्रिय और त्रस के जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण 33 पेज नीचे से तीसरी लाइन दूसरी अभी, तथा पंचेंद्रिय पर्याप्त और त्रस पर्याप्त जीव के जघन्य काल अंतर्मूर्त है, पर्याप्तों में जघन्य काल अंतर्मूर्त पाया जाता है, तथा उत्कृष्ट काल पंचेंद्रिय जीव के पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक हजार सागर कितना है। पंचेंद्रिय परिचेंद्रिय होता रहे कि कौन से गति में चला जाएगा, कहाँ कहाँ घूमेगा, बोलो सुशीला बेन। पंचेंद्रिय अकेला अपना क्राइटेरिया पंचेंद्रिय का है, कौन से गति में जाएगा, चारों गति में। पन काल कौन सा गिनना, पंचेंद्रिय पने का उत्कृष्ट काल। तो 1000 सागर प्लस पृथक्त्व पूर्व कोटि पंचेंद्रिय पने का काल है, और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव का 100 पृथक्त्व सागर, यानी पृथक्त्व 100 सागर, वहां कितना 1000 सागर प्लस पृथक्त्व पूर्व कोटि था। अब पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में लगातार घूमता रहे तो 100 पृथक्त्व सागर, यानी पृथक्त्व 100 सागर, यानी हम कहते ना 800 सागर, 900 सागर, जो पृथक्त्व की जो संख्या है उतने 100 सागर। सौ पृथक्त्व, यानी पृथक्त्व का अर्थ क्या है, कुछ, जैसे हमने पृथक्त्व का अर्थ अलग अलग अर्थ किया था, हम मान लेते ना यहां 8 संख्या ले ले पृथक के लिए, तो 100 पृथक्त्व यानी 800, 800 सागर, इस तरह से उसका अर्थ करेंगे। नहीं नहीं, पृथक्त्व जो कुछ है उसमें तो पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक हजार सागर, 1000 सागर प्लस पृथक्त्व कोटि पूर्व, नहीं यहाँ पद बताया नहीं है, हमने पहले तो देखा था, हमने जो पहले देखे थे पृथक्त्व के प्रमाण अलग अलग थे तिर्यंचों में मनुष्यों में, वैसे यहाँ नहीं लिखा है अलग से, यहाँ इतना ही कहना कि 1000 सागर अधिक पृथक्त्व कोटि वर्ष। अब पंचेंद्रिय पर्याप्तों में लगातार घूमता रहे तो पृथक्त्व 100 सागर, यानी 100 सागर, कितने 100 सागर, 100, 200, 300, 400, इस तरह से, तो हम मान लेते हैं ना 800 जो कुछ है, विपुलता के लिए पृथक्त्व शब्द आता है, अनेक 100 सागर, यानी अभी 1000 सागर नहीं होगे, कुछ 100 सागर हो गए, 1000 सागर से छोटे हो गए ना, 3 से 9 तक को यहाँ पृथक्त्व कहा है, 1000 होते 1000 कहलाते हैं, तो उससे नीचे की संख्या है। त्रस जीव जो हम बारंबार कहते त्रस की स्थिति, त्रस की स्थिति, तो ये हाँ त्रस जीव के साधिक 2000 सागर जो कहते हैं, तो पृथक्त्व पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर। जब हमने पंचेंद्रिय की बात की तो 1000 सागर प्लस पृथक्त्व कोटि पूर्व, यहाँ 2000 सागर प्लस पृथक्त्व कोटि पूर्व। पूर्व कोटि पृथक्त्व कहो या पृथक्त्व कोटि पूर्व कहो, एक ही बात है, कुछ पूर्व कोटियां अधिक 2000 सागर में, कुछ पूर्व कोटियां अधिक। हाँ, ये किसकी है? त्रस की स्थिति। जब त्रस कहते हैं तो उसमें पर्याप्त भी आए और अपर्याप्त भी आए। अकेले पर्याप्तों की, त्रस पर्याप्त जीव के पूरे 2000 सागर, अकेले पर्याप्त पर्याप्त में घूमे तो 2000 सागर, और पर्याप्त पर्याप्त दोनों बीच में कुछ करते रहे तो साधिक 2000 सागर। साधिक में कितना आता है? पृथक्त्व कोटि पूर्व, वो साधिक में चले जाएंगे। तथा अब जब पंचेंद्रिय कहते हैं और त्रस कहते हैं तो मोहिनी के विभक्ति से रहित भी हो गए जीव अभी उसमें, एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक तो वो थे नहीं। हाँ, मोहिनी कर्म से रहित पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त तथा त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल मोहिनी कर्म से रहित मनुष्यों के काल के समान जानना चाहिए। कितना जाना था हमने? जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट देशों न पूर्व कोटि, एक पूर्व कोटि का भाव उसमें वो 8 साल और अंतर्मूर्त कम कर देना। विशेषार्थ, कोई एक जीव यदि पंचेंद्रियों में निरंतर परिभ्रमण करे तो वह पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर काल तक ही पंचेंद्रिय रहता है, अनंतर उसकी पंचेंद्रिय पर्याय छूट जाती है। ये नियम से उससे अधिक काल नहीं भ्रमेगा वो। इसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस और त्रस पर्याप्त जीव का भी अपने अपने उत्कृष्ट, कैसा वो ऊपर बताया हुआ, उक्त उत्कृष्ट काल तक उस पर्याय में निरंतर, निरंतर ने बीच में अन्य पर्याय पाए बिना इसी पर्याय में वो रहे, निरंतर अधिक से अधिक परिभ्रमण का प्रमाण समझना चाहिए। इनका जघन्य काल स्पष्ट ही है, ये खुद्दा भवग्रहण कहा था वो तो समझ में आ सकता है। इन पंचेंद्रियादिकों में मोहनीय कर्म का अभाव मनुष्य के ही होता है, अतः मनुष्य गति में जो मोहनीय के अभाव का जघन्य और उत्कृष्ट काल ऊपर कहे आए हैं, वही पंचेंद्रियादि चारों की अपेक्षा, कौन चार? पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त, उनकी अपेक्षा से भी समझना चाहिए। ये तो इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा दोनों उन्होंने ले लिए। अब योगों की बात करेंगे। पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों के मोहनीय विभक्ति और अविभक्ति का कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अब योग में मोहनी की विभक्ति और अविभक्ति लेना है। हम कितना काल है उसको छोड़ देते हैं। पांच मनोयोगी है, उनमें विभक्ति वाले कौन है और अविभक्ति वाले कौन है? पांच मनोयोग कौन से? एक सामान्य, सामान्य कहते थे उसमें सभी गर्भित है, वो सामान्य होता है, और हर एक को अलग अलग गिनाएंगे तो सत्य मनोयोग, असत्य, उभय और अनुभय, ऐसे हो गए। तो ये पांचों ही भेद कहां तक पाए जाते हैं? 12वें गुणस्थान तक। तो 12वें गुणस्थान तक के जीवों में विभक्ति वाले कौन है और अविभक्ति वाले कौन है? बोलो लक्ष्मी जी, कौन से गुणस्थान तक विभक्ति वाले हैं और कौन से गुणस्थान में? हाँ, 1 से 11 विभक्ति वाले हैं और 12वां वाला अविभक्ति वाला है। तो इसलिए कहते हैं जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। क्यों ऐसा कहा? यह योग अधिक से अधिक कितने काल तक रहता है? अंतर्मूर्त, इसलिए उसका अंतर्मूर्त काल कहते हैं। और जघन्य में एक समय कैसा होगा? व्याघात नहीं, ऐसा ले ना, योग पलट गया उस अपेक्षा से, योग पलट गया। हाँ, योग के परावर्तन के कारण। जब हम पढ़ेंगे विशेषार्थ में, देखो, कोई एक मोह विभक्ति वाला, क्योंकि वहां परिवर्तन होता है ना, काय योग से मनो योग, मनो से वचन योग वगैरह। कोई एक मोह विभक्ति वाला, विभक्ति वाला यानी कहाँ का जीव लेना है? अभी 11वें तक का लेना है। योग वाला है। कहाँ योगी जीव, कहाँ योग का काल पूरा हो जाने पर विवक्षित मनोयोग को प्राप्त हुआ। ये पांच में से किसी एक भेद को प्राप्त हुआ, मान लेते हम सत्य मनोयोग को प्राप्त हुआ। वहां वह एक समय तक रहा, अनंतर मरकर काय योगी हो गया, उसका योग पलट गया ना। क्योंकि मरने के बाद मनोयोग नहीं रहता, ना ही वचन योग रहता है, वो तो काय योग हो जाता है। अथवा कोई एक मोह विभक्ति वाला काय योगी जीव काय योग का काल पूरा हो जाने पर विवक्षित मनोयोग को प्राप्त हुआ, जो कि एक समय तक रहा, अनंतर व्याघात हो जाने से दूसरे समय में पुनः उसके काय योग हो गया। जब व्याघात यानी रुकावट आती है तो वापस वो काय योगी हो जाता है, इसलिए मनोयोग चालू होते ही व्याघात होकर काय योग में आ गया। ऐसा कभी नहीं होता कि काय योग का व्याघात होकर मनोयोगी हो जाए, व्याघात होने के बाद, रुकावट होने के बाद वो नियम से काय योगी हो जाता है। जैसे कषायों में भी हम देखते हैं व्याघात यानी रुकावट, व्याघात यानी योग वह रुक गया और फिर अन्य योग में चला गया, उसको व्याघात कहते हैं। रुकावट का ऐसा कोई कारण नहीं होता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे ये वो योग का पलटना हो गया ना व्याघात के कारण, जैसे कषायों में भी होता है। कषायों में जब व्याघात होता है तो क्रोध पर आ जाता है, ये अन्य लोभ में था और उसमें रुकावट आ गई तो फिर क्रोध में चला जाता है। वैसे यहाँ कोई अन्य योग में रुकावट आती है, यो व्याघात होता है तो काय योगी हो जाता है। इस प्रकार विवक्षित मनोयोग के साथ मोह विभक्ति का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। विभक्ति वाले का जघन्य काल घटित किया, मरण की अपेक्षा और व्याघात की अपेक्षा, ये दो बातें ख्याल में रखना। इसी प्रकार वचन योग की अपेक्षा से मोह विभक्ति के एक समय प्रमाण काल का कथन करना चाहिए। जैसे मनोयोग में घटित किया वैसे वचन योग में, वचन योग में आया, मरण हो गया और फिर काय योग में चला गया। मोह अविभक्ति क्षीण मोह गुणस्थान से होती है और क्षीण मोह गुणस्थान में पृथक्त्व वितर्क विचार तथा एकत्व वितर्क अविचार, ये दोनों ध्यान संभव है। क्योंकि हमने देखा 12वें गुणस्थान का संख्यात व काल बीत जाने पर ये बात शुरू हो जाती है, उसके कुछ एक अंतर्मूर्त के बाद। पहले 8वें से जो पृथक्त्व वितर्क का अविचार चालू था, ये विचार चालू था, वो 12वें के शुरू में वही है और फिर बाद में वो एकत्व वितर्क का अविचार चालू हो जाता है। यानी जो योग का पलटना रुक जाता है ना, योग से योगांतर, वो 12वें के शुरू में है वहां पर। वीरसेन स्वामी कर्म अनुयोग द्वार में ध्यान का कथन करते हुए लिखते हैं कि क्षीण कषाय के काल में सर्वत्र एकत्व वितर्क अविचार ध्यान ही होता है, यह बात नहीं है। वितर्क क के ऊपर रफार दे, क्योंकि ऐसा मानने पर वहां परिवर्तन द्वारा योग का एक समय प्रमाण काल का कथन नहीं बन सकता। अतः इससे जाना जाता है कि क्षीण कषाय के प्रारंभ में पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान भी संभव है तथा अद्धा परिमाण का निर्देश करते समय तीनों योगों के काल से एकत्व वितर्क वीरतक हुआ। एकत्व वितर्क अविचार, वो भी दीर्घ चाहिए। अविचार ध्यान का काल बहुत अधिक बतलाया है और एकत्व वितर्क अविचार ध्यान के काल से क्षीण कषाय का काल बहुत अधिक बतलाया है। यानी पूरे क्षीण कषाय में एकत्व वितर्क अविचार नहीं पाया जाता, शुरू में पृथक्त्व वितर्क विचार भी पाया जाता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि क्षीण कषाय गुणस्थान में उक्त दोनों ध्यान संभव है। ये जो अल्प बहुत्व है ना, वो भी इस तरह से कार्यकारी होते हैं निर्णय के लिए। अतः जो सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीव 10वें गुणस्थान वाला विवक्षित मनोयोग और वचन योग के काल में एक समय शेष रहने पर क्षीण कषाय होता है, उसके विवक्षित मनोयोग और वचन योग में मोह अविभक्ति का जघन्य काल एक समय बन जाता है। दसवें में वो विवक्षित मान लेते, हम सत्य मनोयोग में था, तो सत्य मनोयोग में एक समय अभी बाकी था उसका, वो तो गुणस्थान पलटते योग पलटना नहीं होता है, योग तो अपना काल पूरा होगा तब पलटेगा, तो उसके पलटने के लिए एक समय बाकी था, पर तभी वो बारहवें में चला गया, और बारहवें में एक समय बिताने पर उसका योग पलटी हो गया, तो उसका एक समय घटित होगा किसके साथ, मोह अविभक्ति के साथ। हमें यहाँ मोह विभक्ति और अविभक्ति से प्रयोजन है। तथा सभी मनोयोगों और वचन योगों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः इनकी अपेक्षा मोह विभक्ति और मोह अविभक्ति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। अब काय योगियों के ये काय मार्गणा नहीं चल रही, काय योगी चल रहे, मनोयोगी वचन योगी बता रहे, अभी काय योगी की बात चल रही। काय योगियों के मोहनीय विभक्ति का कितना काल है, तो काय योगियों में मोहनीय के विभक्ति वाले हो गए कि अविभक्ति वाले हो गए, हाँ दोनों हो गए, क्योंकि योग है ना, काय योग कहाँ तक है, औदारिक काय योग तेरहवें वाले को भी है, हाँ अयोगी चौदवा वाला अयोगी है। तो यहाँ कहते हैं काय योगियों के मोहनीय विभक्ति का कितना काल है, तो विभक्ति सहित काय योग कहाँ तक पाया जाएगा, विभक्ति सहित मोहनीय की सत्ता सहित ग्यारहवें तक होगा। हाँ तो जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है, क्यों, लगातार काय योग में ही रहा, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार काय योग में रहता है, एक इंद्रियों में असंख्यात पुद्गल परिवर्तन देखता है ना, काय योग बीच में भले औदारिक मिश्र आए कारमान काय योग आए, पर तो वो है तो काय योग के भेद, तो लगातार काय योग में ही रहा, यानी एक इंद्रियों में ही लगातार रहा, तो लगातार काय योग में रहने का कितना काल है, तो अनंत काल है। तो जघन्य काल एक समय, एक समय कैसे, विशिष्ट मनोयोग से काय योग में आ गया और मरण हो गया, मरण परंतु काय योग ही रहेगा ना उसका, वो अविभक्ति वाला हो गया, ऐसा कह सकते हम, नहीं विग्रह गति में भी उसका काय योग तो कायम रहेगा, ऐसा लेना काय योग वाले के साथ वो दसवें में था और बारहवें में ग्यारहवें में आते ही काय योग से मनोयोग हो गया, मरण हुआ तो भी काय योग रहेगा ना, कारमान काय योग रहेगा या औदारिक वैकरिक मिश्र होगा, वो काय योग ही रहेगा, काय योग के भेद नहीं लेने हमको, तो काय योग से काय योग में रहेगा। यहाँ क्या लेना है, औदारिक काय योग में था, ग्यारहवें में गया और फिर वो अन्य योग में हो गया, ग्यारहवें में जाने की बात तो नहीं, नहीं बारहवें में लौटाना है उसको, बारहवें में जाना है, पहले सूक्ष्म सांप्राय में था तो विभक्ति वाला था, हाँ और बारहवें में गया। देखो जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, हमने देखा था ये एक इंद्रियों का उत्कृष्ट काल है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, तथा काय योगियों के मोहनीय अविभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल मनोयोगियों के समान है। मनोयोगियों में हमने देखा था वो तो एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बताया था, यानी अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार काय योगियों में किसकी बात, मोहनीय का अविभक्ति का काल, इसी प्रकार औदारिक काय योगियों के भी समझना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिक काय योगियों के मोहनीय विभक्ति का उत्कृष्ट काल देशोन 22,000 वर्ष है। ये देशोन क्यों किया और ये 22,000 वर्ष किसके लिए, देखो देखो पंचेंद्रियों में काय योग वचन योग मनोयोग, इनका उत्कृष्ट काल किसी एक योग में रहने का अंतर्मूर्त ही होता है, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में योग पलटता है। अभी काय योग लगातार चालू रहे तो ऐसी कौन सी अवस्था है, तो एक इंद्रियों की, उनमें तो वचन योग और मनोयोग नहीं होता। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, औदारिक काय योग लिया, औदारिक मिश्र नहीं लिया, औदारिक काय योग लिया। तो औदारिक काय योग में देशों ने क्यों लिया? 22,000 वर्ष में कुछ कम करना है, क्यों किया? हाँ हाँ, पृथ्वी का एक की अधिक से अधिक आयु 22,000 वर्ष है, बरोबर है? हाँ हाँ, नहीं समझो ना, उसमें कुछ कम क्यों किया? औदारिक का ये स्पेसिफिक बताया। तो वहां जाते पहले में क्या होगा, औदारिक मिश्र होगा कि नहीं? शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती तब तक उसको औदारिक मिश्र का योग होता है, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर औदारिक का योग चालू हो जाता है, वो मरण तक औदारिक का योग ही रहता है। इसलिए कुछ कम जो है वो एक अंतर्मूर्त औदारिक मिश्र का घटाया इस तरह से। मुनि विभक्ति का उत्कृष्ट काल बताया ना, औदारिक का योगियों के ये लगातार होता रहे तो क्या जाता, लगातार पृथ्वी कायिकों में घूमता रहे तो औदारिक काय चालू नहीं रहेगा बहुत लंबे काल तक। हाँ जय बेन, पृथ्वी काय में से पृथ्वी काय में ही गया मान लेते हैं तो कंटिन्यूस 22 डबल करना, 44 लेना कि नहीं लेना? हाँ मयंक भाई, लगातार पृथ्वी कायिकों में घुमाओ ना उसको, तो हजारों वर्ष ऐसे हो गए कि नहीं हो गए? हाँ कौन सा होगा बोलो। अभी 22,000 वर्ष बताया ना यहाँ पर उत्कृष्ट बताया, तो दूसरा भी भव आ जाए उसने 22,000 वर्ष का तो डबल होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ औदारिक मिश्र तो आएगा ही, कारमान आए या न आए वो तो ऑप्शनल है। कारमान का योग विग्रह गति से जाता है तो ही आता है, रुजु गति से जाएगा तो डायरेक्ट औदारिक मिश्र आ जाएगा। तो बीच में औदारिक मिश्र हुए बिना आगे का योग नहीं होगा, औदारिक का योग। तो शुरू में औदारिक मिश्र आएगा, यहाँ औदारिक काय की बात है, अकेले काय की बात नहीं करे। अकेला काय योग में तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन लिए, अब यहाँ औदारिक काय की बात चल रही है। तो औदारिक काय योग में अधिक से अधिक, वो पहले औदारिक मिश्र के बाद शुरू हुआ औदारिक काय योग, पृथ्वी काय की लंबी आयु लेना 22,000 वर्ष वाली, इसलिए देशों ने 22,000 वर्ष कहा। औदारिक मिश्र काय योगियों के मोहनीय विभक्ति का जघन्य काल, ये औदारिक मिश्र में मोहनीय अविभक्ति भी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, औदारिक मिश्र और मोहनीय की सत्ता नहीं है, ऐसा कोई जीव होगा कि नहीं होगा? कौन होगा बोलो सुशीला बेन? औदारिक मिश्र का योग है और मोहनीय की सत्ता ही नहीं है। हाँ बोलो, मैं 13वें में कौन सा वो कपाट समुद्रात वाला, हाँ एक समय के लिए चढ़ते हुए एक समय उतरते हुए, यहाँ अलग बात है। अभी विभक्ति यानी सत्ता वाला औदारिक मिश्र का योगियों के मोहनीय विभक्ति का जघन्य काल कितना? खुद हम हमेशा कितना लेते हैं? खुद्दा भवग्रहण। तो खुद्दा भवग्रहण में पूरा औदारिक मिश्र का योग ही होता है मरण तक, तो उसमें 3 समय कम किए। 3 समय क्यों घटाए? मिनिमम काल बताना है। हाँ विग्रह गति में कारमान का योग में उसने 3 समय बताए। 3 मोड़ वाली गति है ना, सूक्ष्म में होती है, तो वहां 3 समय उसके बाद किए, क्योंकि खुद्दा भवग्रहण को हमको छोटा बनाना था। तो औदारिक मिश्र के लिए इतना छोटा काल हो सके, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। क्यों अंतर्मूर्त? क्योंकि मान लेते कि रुजु गति से भी जाता रहे बिना कारमान का योग से औदारिक मिश्र लब्ध्य पर्याप्त तक में, मरकर फिर लब्ध्य पर्याप्त, फिर औदारिक मिश्र, फिर औदारिक मिश्र, फिर औदारिक मिश्र, ऐसा लगातार करता रहे तो भी अंतर्मूर्त होता है। हमने वो 66,000 सब गिने थे ना, वो सारे औदारिक मिश्र वाले ही तो गिने थे, यानी सबकी टोटल भी अंतर्मूर्त होगी, इसलिए अंतर्मूर्त कहा। और मोहनीय अविभक्ति का कितना काल है? अभी औदारिक मिश्र और मोहनीय की अविभक्ति कितना होगा? एक कपाट समुदात वाला कितने समय तक रहता है? एक समय, अधिक से अधिक एक ही समय। जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये बात ख्याल में आई? औदारिक मिश्र और अविभक्ति समुद्घात केवली अवस्था में, वो भी कपाट समुद्घात में होता है, औदारिक मिश्र का योग पाया जाता है। वैक्रिय का योगी और आहारक का योगी जीवों के, ये वैक्रिय वालों में विभक्ति वाले हो गए कि अविभक्ति वाले हो गए? दोनों हो गए। कैसे हो गए? यानी वैक्रिय का योग है और मोनी की सत्ता ही नहीं है, ऐसा कोई जीव होगा कि नहीं होगा? देवगति में, नारकियों में ऐसा कोई जीव होगा कि जिनके बारवा गुणस्थान आ गया है? अविभक्ति बारहवें, तेरहवें, चौदहवें में भी होगी, वही होगी। आहारक में होगा कि नहीं होगा अविभक्ति? वो भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो छठा गुणस्थान है ना वहां पर। तो कहते हैं वैक्रिय का योगी और आहारक का योगी जीवों के मोहनीय विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल मनोयोगियों के समान है, अंतर्मूर्त है। क्योंकि वैक्रिय का योग कितने काल तक लंबा चलेगा? हाँ, अंतर्मूर्त। वो 33 सागर तक लगातार नहीं चलेगा। मनोयोग, वचन योग, का योग, वो पलट चलेगा। हाँ, हाँ? जब एक समय, हाँ, वैक्रिक का योग वैक्रिक शरीर के अपेक्षा भी समझना, हाँ, तो उसमें मरण हो गया तो पलट गया। आहारक का योग में भी लिया, आहारक मिश्र को नहीं लिया है, क्योंकि आहारक मिश्र में एक समय घटित नहीं होगा। आहारक मिश्र अवस्था में मरण नहीं होता कभी। आहारक का योग शुरू हुआ और फिर वहां तो एक समय के बाद मरण हो सकता है, तो फिर चले जाएंगे वैकिरिक मिश्र में चले जाएंगे, या कारमान का योग हो जाएगा बीच में। मुनिराज का मरण हुआ आहारक के साथ, तो देव में जाएंगे ना मुनिराज। वैकिरिक मिश्र का योगियों के मोहनीय विभक्ति का कितना काल है? जगन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार से अंतर्मूर्त काल है, क्योंकि वैकिरिक मिश्र अवस्था में कोई मरण बिरण वहां नहीं हो सकता है। वैकिरिक काय में तो होगा, क्योंकि वैकिरिक कोई देव या नारकी है। मरण के पहले एक समय पहले मनोयोग से काय योग में आया और मर गया, वहां तो एक समय घटित हुआ था। वैकिरिक मिश्र अवस्था कब होती है? अब देव में या नारकी में जन्मा है, शरीर पर्याप्ति तक वैकिरिक मिश्र होगा, यह अंतर्मूर्त काल। वहां तो किसी का मरण नहीं होता है वैकिरिक मिश्र अवस्था में, इसलिए वहां उसका जितना काल है अंतर्मूर्त उतना तो पूरा रहेगा ही। इसी प्रकार आहारक मिश्र का योगी, ये भी जगन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त ही होगा, यहाँ एक समय नहीं घटित होगा। उपशम सम्यक दृष्टि, क्योंकि जहां जहां मरण नहीं है और जिसका काल अंतर्मूर्त है उसको यहाँ लिया है। उपशम सम्यक तो के काल में भी मरण नहीं होता है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। कार्मण का योगियों के मोहनी विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है, क्योंकि हमने देखे विग्रह गति में तीन समय हो सकते हैं। और अविभक्ति का कितना काल है कार्मण में? तो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार से तीन समय काल है, जो केवली समुदात में होता है। केवली समुदात में ऐसा नहीं होता कि प्रतर करके वापिस लौटा, पूरा ही प्रतर, लोक पूरण और प्रतर करके फिर हो जाएगा। इसका विशेषार्थ कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होरो। मयंक भाई,